तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 77। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरिः विस्मर्यो मे महान राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को दिखाया था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था। लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बार बार उसका आनंद उठा रहे थे। सो लेट्स सी 76। राजन संश्रुत्य संश्रुत्य संवादम इदम अद्भुतम केशव अर्जुन यो पुण्यम हृष्यामि च मुहु मुहु। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। सो मैं 76-77 का निरूपण करूंगा और उसके बाद 78 हम लेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और ये 78 श्लोक सबको कंठस्थ करना ही होगा। तो ये बहुत अद्भुत श्लोक है क्योंकि उसमें दोनों श्लोकों में चार बार एक शब्द आया और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, संस्मृत्य। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, चार बार। जब सोचिए कोई भी चीज रिपीट की जाती है तो वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। संस्मृत्य, स्मृत्य, स्मृति, स्मरण, सिमरण, तो ये भगवान कृष्ण का और उनका वार्तालाप और उनके परिकर, उनकी वाणी, उनकी गीता उनसे अभिन्न है, अर्थात एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो ये भगवद गीता का पढ़ना, समझना, सोच करना, उनको स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना, उनके हर एक श्लोक का निरूपण सुनना, ये कृष्ण ही है। तो संस्मृत्य संस्मृत्य स्मृत्य, तो हमें भगवान की वाणी हमेश श्रुति में हमेश याद करनी चाहिए, उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए और मन को उसके ऊपर लगाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। जब हम माला करते हैं तो हमारी स्मृति, हमारी याददाश्त, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा ध्यान भगवान के नामों पर होना चाहिए, भगवान के नाम के उच्चारण पर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण को सुनने पर स्मृत्य समस्मृत्य हमारा स्मरण बना रहना चाहिए। जितना हम स्मरण करेंगे उतना हम, जैसे यहाँ संजय कह रहे हैं कि मैं बहुत आह्लाद आह्लाद गदगद हो उठता हूँ, और मुझे आह्लाद बारंबार मुहूर मुहूर पुनः पुनः ये शब्द भी चार बार उपयोग किया गया, संजय बोल रहे हैं। तो चार बार दूसरा शब्द का प्रयोग क्या यहाँ कर रहे हैं, पुनः पुनः बारंबार फिर बारंबार पुनः पुनः मुहूर मुहूर मुहु मुहु पुनः पुनः। तो हमेश पुनः पुनः अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन क्या करें, विस्मर्यो विस्मर्यो या समश्रुत्य समश्रुत्य बारंबार ध्यान करें, समश्रुत्य में ध्यान करना। तो जब हम श्री कृष्ण से इतने आसक्त हो जाएंगे, इतने श्री कृष्ण में आसक्त या तो लगाव हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा श्री कृष्ण में, तो हम बार बार पुनः पुनः समश्रुत्य हम कभी भी उनको भूल नहीं पाएंगे। अगर भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएंगे। जैसे कि गोपियां को उद्धव जी कहते हैं कि उद्धव संवाद में उद्धव जी कहते हैं गोपियों को कि उनके पर ध्यान करो ध्यान करो, कृष्ण के पर ध्यान करो। तो गोपियां कहते हैं अरे आप हमें ध्यान करने का बोल रहे हो, हम उनका विस्मरण करना चाहते, हम उनको भूल जाना चाहते। वो छलिया अभी मथुरा चला गया और हमें वीरा की वेदनाओं में डुबोते हुए हमें चला गया। हम उनके साथ कैसे विहार करती थी, कितना आनंद प्रमोद कितना सुंदर लीलाएं राधा रानी और कृष्ण की, सुंदर अंतरंग गुह्य निभृत निकुंज में, नितांत निभृत निकुंजों में जो लीलाएं हम करते रहते थे, उन लीलाओं का जो हमें स्मरण है, कृष्ण का स्मरण है, इन सब को हम भूलने जा रही है। हमसे भूला नहीं जाता, हमारा स्मरण में ये हमेशा 24 घंटा रहता है और हम भूलना चाहती है और आप हमें स्मरण करो स्मरण करो स्मरण करो, तो उल्टा कह रहे हो। तो उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को गोपियां अच्छे स्टाइस उनको डांटती है। तो ये स्मरण ये बहुत बड़ी चीज है, हमें हमारी सारी उम्र में ये भगवान कृष्ण का स्मरण होता रहे। स्मरण और स्मरण का अर्थ है मनन, मनन का अर्थ है मन। तो मन को हमें वश में करना है, जिन्होंने मन को वश कर लिया तो सारी दुनिया को वश कर लिया, सारे उनके जो भी आनंद के साधन है सब उनको मिल गए, सब आनंद मिल गया, सब जिसके लिए हम इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे कि हम सब पीएचडी और मास्टर डिग्री या कुछ भी पढ़ते हैं तो दो चीजों के लिए पढ़ते हैं, एक तो हमें अच्छी बहू या पति मिल जाए और दूसरा हमें अच्छा पैसा मिल जाए। तो ये दो चीजों में आम जनता आनंद ढूंढ रही है, लेकिन हमारा आनंद हम में ही है, हम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। और उनका उदाहरण ये है कि इस गलियों में घूमता हुआ बच्चा, कोठियों में खरबजों पति का जो बच्चा होता है उनसे ज्यादातर आनंदित फ्री और मौज हंसता कुत्ता गाता घूमता, इनके गंदे गंदे कपड़े न कमा न बाप न कुछ, लेकिन वो हर्ष उल्लासित रहता है। और उन बच्चे करोड़ खरबजों पति के बच्चे को पुलिस के साथ या सिक्योरिटी के साथ बस में बिठाओ, और जब वहाँ भी स्कूल में उतरे तो कोई हाईजैक ना कर जाए, और कोठी में ही खेलो और कोठी में सब कुछ करो। और बंधन, पैसों से आनंद मिलता तो सब खरीद लेते हैं आनंद को, लेकिन पैसादार ज्यादातर दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आनंद क्या है, आनंद कहाँ है, आनंद कौन है, आनंद की परिभाषा क्या है जानते नहीं है। आनंद की परिभाषा ये है कि आनंद सदैव रहे, और इतना ही नहीं आनंद सदैव बढ़ता रहे, घटता न जाए, कभी कम न हो, ये आनंद की परिभाषा है। तो भक्त लोग स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा हमेशा हाई रहते हैं आनंद में। उनके यहाँ कहा ना समश्रुत्य समश्रुत्य पुनः पुनः और मुहुर मुहुर, मैं हृष्यामी हर्षित होता हूँ। हृष्यामी भी दो बार बोलिए, दो बार ये शब्द दोनों श्लोकों में, मतलब कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हृष्यामी अर्थात हर्षित आनंदित होता हूँ, हृष्यामी हृष्यामी, पहले वाले श्लोक में हृष्यामी च मुहु मुहु और हृष्यामी च पुनः पुनः, मैं आनंदित होता हूँ आनंदित। वहाँ युद्ध हो रहा है और फाइटिंग हो रही है और सब लोग फाइट करने को तैयार हो गए, सन फूक लिए, धनुष बाण हाथ में ले लिया, और यहाँ भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, और यहाँ संजय देख रहे हैं, और संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र जो पीड़ित है, जो बहुत बहुत दुखी हो चुका है कि अभी युद्ध होने जा रहा है, और ये संजय बोलता है मैं ऋषियामी पुनः पुनः, ऋषियामी च मुहुर मुहुर, मैं आनंदित हो रहा हूँ आनंदित हो रहा हूँ। तो ये आध्यात्मिक स्तर पर है संजय, और धृतराष्ट्र भौतिक स्तर पर। भौतिक स्तर का अर्थ है मनी और हनी में ढूंढना, राज्य, मुझे राज मिल जाए, वो जीत जाए। तो मामका पांडवाश्चैव, ये पहला श्लोक है, मामका पांडव चाह किम करो, तो संजय उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो दुखी है तो पूछ रहा है। तो संजय यहाँ उनका मंत्री, धृतराष्ट्र का मंत्री होते हुए भी उनको कह रहा है कि मैं समश्रुत्य समश्रुत्य हर्षियामी हृषियामी पुनः पुनः मुहुर मुहुर, मुझे हर्ष हो रहा है, मुझे हर्ष, ये आनंद। तो कितना सुंदर ये बात है, आप कितना आप सब समझ सकते हो कि धृतराष्ट्र इज इन माया, वो मोह में है, माया में है, और वो दुखी हो रहा है, और यहाँ उनका सेक्रेटरी उनके सामने ही उनको कह रहा है कि मुझे इन दोनों का संवाद सुन के आनंदित आनंदित बार बार आनंद का हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। तो ये भक्तों का स्तर है, इट इज इन अ लेवल ऑफ एंजॉयमेंट ब्लिस, डिवोटीज आर ऑलवेज एंजॉयिंग दिस ब्लिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो वी आर ऑल वेरी वेरी हाईली, हम सब बहुत बड़े बड़भागी हैं, बहुत बड़े, बहुत, हमारा भाग्य की कोई सीमा नहीं है। ये महसूस हम कर रहे हैं और करोगे और करते रहोगे। जैसे मेरी जिंदगी अभी खत्म हो गई, खत्म होने अभी प्लस में चल रहा है, इट इज, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी कितनी सुंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस में गई, और नहीं तो मैं WL2/8 या यू नो मेट्राइसिस एंड व्हाट नॉट एंड कंप्यूटर्स और डिजाइन यू नो ऑल दिस थिंग्स में करता रहता, कुछ भी करता रहता, और ये सब ऑफिसों में यू नो क्या पीड़ित होता रहता। तो कितनी सुंदर ये जिंदगी, तो हम कमा भी सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, बच्चे भी, गाड़ियाँ, महल, सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें समश्रुत्य समश्रुत्य पुनः पुनः मुहु मुहु हर्षियामी रहना है। और रहेंगे अगर कृष्ण कॉन्शियस, अगर हम कृष्ण भक्ति में स्थित रहेंगे, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम सब को एक कृष्ण मिले, अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त मिले, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त मिले, और प्रभुपाद के शुद्ध ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर लिखे हुए, दिव्य स्तर पर लिखे हुए ऐसे सुंदर ग्रंथ हमें मिले, जिससे हम हमेशा आनंद का, हमेशा आनंद का अनुभव कर सकते हैं और हमारा आनंद हमेशा बढ़ सकता है। तो हमें ये समश्रुत्य, हमें हमेशा स्मरण रखना पड़ेगा, किसका? श्री कृष्ण का और उनके भक्तों का, उनके भक्तों का। हमें कृष्ण की स्मृति बनी रहे, ये उनका तात्पर्य है। और इतना ही नहीं, उन स्मृति में हमें हमारा आनंद पुनः पुनः बार बार मुहूर ऋषियामी हर्षित हम होते रहे, हमारा आनंद का प्रतीक, या हमें आनंद कहाँ से मिलेगा? आध्यात्मिक जीवन से। बाकी का आप कुछ भी कर लो, आनंद नहीं मिल सकता। ये डिजाइन है, भौतिक जगत की डिजाइन भगवान ने ऐसी की है कि जिसमें भौतिक जगत में निरानंद, कोई भी आनंद नहीं है, लगेगा कि आनंद है, चपल सुख, लेकिन ज्यादातर ये आनंद टिकेगा नहीं, अनलेस कि हम आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाए। तो इसके लिए ये सब प्रभुपाद जी ने हमें विधि विधान दिए, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एंड अर्ली टू राइज मीन्स चैंटिंग 16 राउंड्स एंड रीडिंग भगवत गीता भागवत एंड एसोसिएटिंग विथ डिवोटीज ऑन दिस काइंड ऑफ फोन कॉल। आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड जुबिलेंट, बहुत मैं खुश हूँ कि ऐसा क्लास हर रोज आप लोग कर रहे हो। बहुत बहुत ही बड़ा कार्य है ये, आप सब, मैं कह सकता हूँ कि नहीं जानते हैं कि आपके आनंद, आपके सुख, शांति, समृद्धि की कोई सीमा नहीं है। यू विल रियलाइज दैट एज यू गो अलोंग विथ योर लाइफ। चलिए हम आखिरी श्लोक में प्रवेश करते हैं, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप सब सुनिए प्लीज। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय बुद्धिर्ध्रुवा नितिर मतिर मम। तो मैं भाषांतर पढ़ूंगा, लेकिन ये श्लोक का अर्थ मैं भी समझाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, और ये आपको 3 दिन में श्लोक याद करना है। बहुत बहुत ही सुंदर सरल श्लोक है, जल्दी हो जाएगा। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ योगेश्वर योगियों के ईश्वर कृष्ण है, और यत्र जहाँ पार्थ धनुर्धर है, धनुर्धर धनुषधारी पार्थ पृथा पुत्र अर्जुन है, जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, जहाँ कृष्ण अर्जुन है वहाँ क्या होता है? तत्र उधर वहाँ श्री, श्री का अर्थ है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है छह ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रेय ज्ञान वैराग्य षड गुणा उच्यते। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, विजय जीत होती है, भूति ही विलक्षण शक्ति होती है, ध्रुवा निश्चित, ध्रुवा में निश्चित नीति, तो निश्चित नीति होती है, मतिर मम ऐसा मेरा मत है, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो ये श्लोक है कि जहाँ कृष्ण योगी, योगियों के ईश्वर कृष्ण और शुद्ध भक्त अर्जुन जैसे व्यक्ति होते हैं, वहाँ विजय होता है, श्री ऐश्वर्य होता है, और भूति विलक्षण शक्ति भूति भूति करते हैं शक्ति, अर्थात ये युद्ध है, युद्ध हो रहा है तो शक्ति की जरूरत होती है, तो वहाँ शक्ति और ध्रुवा नीति मतलब निश्चित जो नीति होती है अथवा सच होता है वो सत्य होता है, वहाँ चार चीजें होती है, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति, ये चार चीजें वहाँ होती है, ऐसा मेरा मत है। नीतिर मतिर मम, ये मेरी मति है, मेरी मेरा मत है। इन अनदर वर्ड्स एडवांस में संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अर्जुन पांडवों का ही विजय होगा, विजय और उनको ही ऐश्वर्य मिलेगा, क्योंकि उनकी उनकी विलक्षण शक्ति है, क्योंकि उनकी नीति भी निश्चित रूप से धार्मिक धर्म का वो पालन कर रहे हैं, इसलिए उनका ही विजय होगा। ये एडवांस में कह रहे हैं संजय भाषांतर, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, श्रीमद् गीता का शुभ आरंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ, वह भीष्म द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। धृतराष्ट्र, उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए, विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है, ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त है, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। तो यहाँ वैराग्य जो छह ऐश्वर्य है उसमें वैराग्य है एक ऐश्वर्य, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। तो वैराग्य का अर्थ है कि भौतिक संसार बाहर से हमें करना है, लेकिन अंदर से हमें हमेशा याद रखना है, वैराग्य रखना है कि भौतिक संसार में मुझे कभी भी आनंद मिलने वाला नहीं, चाहे मुझे खरबजों रुपया मिल जाए और खरबजों सुंदर स्त्री मिल जाए, लेकिन इन भौतिक संसार में मुझे आनंद मिलने वाला नहीं, ये वैराग्य अंदर से रखना है। और बाहर से आई लव यू मतलब कि ये भौतिक संसार को मैं प्रेम करता हूँ, पत्नी को प्रेम करता हूँ, पति को प्रेम कर, बच्चों को प्रेम करता हूँ, पैसों को प्रेम करता हूँ, बॉस और शिक्षक और प्रोफेसर और माँ बाप और सबको बाहर से आई लव यू आई लव यू आई लव यू, पर अंदर से आई डोंट लव यू वैराग्य, अंदर से वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि ये सब लगता है कि सुख देंगे लेकिन बहुत बड़ा दुख लेके आएगा, इसलिए अंदर से वैराग्य रखना ही पड़ेगा और वो ही सुखी होगा। दूसरा पैराग्राफ, युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था, अर्जुन अपने श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को ओर से लड़ रहा था, क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी, निश्चित थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा, संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, जहाँ पर उसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तर उत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे अर्पितु वे कठोर नीतिवादी थे, उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो नीतिर मतिर मम, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं और धर्म का सदैव पालन किया, सत्य का सदैव पालन किया, और उनकी और भगवान है ऐश्वर्यों के मालिक, इसलिए उनका ही विजय निश्चित रूप से है, ये निर्णय संजय ने दे दिया। आगे वाला पैराग्राफ, ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्र की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे एक ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए अकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में है, मन मना भव मद भक्तो, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्रीमद् भगवद गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है, अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। तो 18वें अध्याय का मत क्या है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को समर्पण करो। तो ये भगवत गीता का सार है, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन, मेरी शरण ग्रहण कर और मुझे आत्मसमर्पण कर, मुझे आत्मनिवेदी भक्त बन, अर्थात मेरा भक्त बन, मैं आपको सुखी आनंदित देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये तीन चीजें आवश्यक हैं, और वो तीन चीजें हैं कृष्ण की शरण ग्रहण करना, अर्थात आत्मसमर्पण करना, अर्थात मेरा भक्त बनना है। तो यह अध्याय का मत है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं ऊपर वाले अध्याय में कि हमें ये भगवत गीता का ज्ञान का विज्ञान करना है। विज्ञान का अर्थ है प्रैक्टिस में, हमारे जीवन में लाना है, हमारे जीवन में हमें उतारना है, अर्थात हमें ये करना है। क्या? मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन, मन मेरे में रख और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हाँ, कृष्ण कह रहे हैं कि आप मेरे शरण में आओ। तो शरण में आना मतलब कि 6 चीजें, शरणागति स्वीकार करना, उनका अर्थ है 6 चीजें, और वो है अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्षयतीति विश्वासो, गोप्यत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप काल्पनीय, षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति है। तो शरणागति का अर्थ एक है अनुकूलेन संकल्प, जो भी कृष्ण को अनुकूल है वो अनुकूल चीजें हमें तुरंत हमारे जीवन में अपनानी चाहिए। जैसे कि अनुकूल कृष्ण को अनुकूल है कि उनका भक्त बने, अनुकूल है हम 4 नियमों का पालन करें, अनुकूल है कि हम 16 माला करें, अनुकूल है कि हम भगवद गीता पढ़ें, अनुकूल है कि श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुने, अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता तो मेरे लेक्चर सुने, या कोई भी इस्कॉन के भक्तों का लेक्चर आपको अच्छा लगता है वो सुने। तो ये सब अनुकूल है भगवान कृष्ण को, उनकी सेवा पूजा अर्चन, उनकी गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, अनुकूलन संकल्प, ये शरणागति। प्रतिकूलन वर्जनम, जो भगवान को प्रतिकूल है, प्रतिकूल का अर्थ है इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, किसी की मार पिटाई करना, किसी का चुरा लेना, जो भी कृष्ण भावना भावित नहीं है वो चीजें करना, ये प्रतिकूल है। प्रतिकूल है ना संकल्प, अर्थात प्रतिकूल चीजें उनको हमारे जीवन में से हटा देना चाहिए। प्रतिकूल है ना संकल्प, रक्षा इति विश्वास हो, कृष्ण मेरा हर हालत में रक्षण करेंगे ही, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसको शरणागति कहते हैं। कृष्ण हाथी को मण, कीड़ी को कर्ण देते हैं और चींटी चिड़िया का रक्षण करते हैं, तो भक्तों का क्यों नहीं रक्षण करेंगे? जैसे यहाँ अर्जुन पांडवों का रक्षण किया, और वो भी कितनी बड़ी सेना में रक्षण किया भगवान ने, शक्ति लेके बैठे थे भगवान। तत्र श्री विजय धृति शक्ति, शक्ति लेके भगवान शक्तिमान है, तो हे भगवान मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे ही, ऐसा दृढ़ विश्वास ये शरणागति है। रक्षा इति विश्वास हो गुरु पृथ्वी वर्णन तथा गोपृत्य वर्णन का अर्थ है कि भगवान हमारे वाली हैं, हमारे भरण पोषण करने वाले हैं। तो चींटी चिड़िया हाथी सबका पोषण करते हैं, राक्षसों का भरण पोषण करते हैं, तो हम जैसे शरणागत भक्तों का भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे? हर हालत में करेंगे। भगवान वचनबद्ध है, आगे वाले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि योग क्षेमम वहामि अहम, मैं उन भक्तों का योग क्षेम वहन करता हूँ, उनके पास जो नहीं है मैं देता हूँ, जो है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभि, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूँ। ये भगवान वचन देते हैं भक्तों को। तो हमारा भगवान हर हालत में भरण पोषण करेंगे ही, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये शरणागति है। रक्षा इति विश्वास गुरुत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप, और हमारा जो भी कुछ है मानस देह गेहो योग किछु मोरे अर्पिलु तू या पद नंद किशोर मार भी राखवी ये इच्छा तुम्हारे नित्य दास प्रति तुया अधिकार भक्तिविनोद ठाकुर। तो ऐसा रक्षा इति विश्वास गोपृत्वी वर्णन तथा आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप है अथवा तो आत्मनिवेदन करना, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, इसको बोलते हैं आत्मनिक्षेप। हमारा जो भी कुछ है मानस देह के योग की चुमुर सब कुछ अर्पित नंद किशोर उनके चरणों में अर्पण करना, ये आत्मनिक्षेप है। और काल्पनीय अटमोस्ट ह्यूमिलिटी उनको बोलते हैं काल्पनीय। काल्पनीय का अर्थ है कि बहुत विनम्र और बहुत हम्बल, विनम्र विनित स्वभाव, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु और तृण से भी तुच्छ, हमेशा मान सबको देना, मान की अपेक्षा नहीं रखना, तो इसको बोलते हैं काल्पन्य। काल्पन्य का अर्थ है विनम्रता। तो ये छह प्रकार की शरणागति है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे एक के शरण में आ। तब भगवान कहते हैं हम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी आई डोंट वांट टू गेट इनटू सो मच डिटेल, लेकिन भगवान का भक्त बनना है, भगवान की शरणागति स्वीकारना है और भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करना है, ये सब शरणागति है। तो मैं यहाँ कथा को विराम दूंगा, कोई सवाल जवाब हो तो वो कर सकते हैं।
भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है, ये 24 प्रकार कौन कौन से? 24 तत्व हैं।
24 तत्व हैं भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और उनकी इंद्रियां, इंद्रियों की तन्मात्राएं और इंद्रियों के विषय, ये सब मिला के 24 तत्व होते हैं। कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 भूत हैं, और अपनी इंद्रियां आँख कान नाक जीभ त्वचा ये 5, ये ज्ञानेन्द्रिय हैं, और 5 कर्मेंद्रिय हैं हाथ पांव, 2 जननेन्द्रिय और गुदा और वाणी ये 5, और इन इंद्रियों का जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये ज्ञानेन्द्रियों का विषय है वो 5, और बाद में मन बुद्धि अहंकार, इन सब मिला के 24 तत्व बनते हैं। तप क्या है? तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि अग्निर सूर्यो, आजू बाजू अग्नि लगाना, जलाना, माथे पे अग्नि जलाना, ऊपर से तो सूर्य का ताप, और ध्यान करो, और ये सब हिमालय पे जाओ, ताप ताप ताप, ये सब तपस्या नहीं है। रियल तपस्या ये है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए ही, या तो उनके शुद्ध भक्तों के लिए कुछ कष्ट झेलना, जैसे गोपकेश्वरी आ रही है, जा रही है तिरुल स्टेशन तोड़ने के लिए जाना। एनी आई एम टेकिंग गिविंग यू एग्जांपल कि तब क्या है। भक्तों के लिए गोपकेश्वरी की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन भक्तों के लिए, हम सब भक्त हैं, तो भक्तों के लिए कुछ कष्ट उठाना तो उसको बोलते हैं तप। भगवान के लिए कुछ कष्ट उठाना, कृष्ण के लिए कुछ कष्ट उठाना हमें अच्छा नहीं लगता है ठंडी में, और वो भी वाराणसी की ठंडी, बहुत खतरनाक ठंडी, उसमें इतना जल्दी 6:30 बजे 5:30 बजे 4:30 बजे उठ जाना, ये रियल सबसे बड़ा तप है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।